नहीं साहब, प्रकाश दिखाए, हमको तो दिखाई पड़ता है, पर आपको दिखाई नहीं पड़ता।
क्यों दिखाई नहीं पड़ता? आपके भीतर हम दियासलाई जलाते हैं, मगर उसमें तेल नहीं है।
महाराज जी,
हमारे अंतःकरण में प्रकाश जला दीजिए, जिससे हम भीतर और बाहर प्रकाश कर सकें। अच्छा तो हम जला देंगे। इसके लिए ही तो हम मस्तिष्क के आज्ञा चक्र में आपको ध्यान कराते हैं, लेकिन जो प्रकाश हम जला कर रखेंगे वह टिकेगा नहीं।
क्यों?
क्योंकि आपके दीपक में तेल नहीं है। क्या करना पड़ेगा?
आपको तेल का ध्यान रखना पड़ेगा। इसका आप ध्यान रखिए, अपना तपस्वी जीवन शुरू कीजिए। चमड़ी का तप नहीं, मानसिक तप कीजिए। चमड़ी के तप को तितिक्षा कहते हैं और जानबूझकर मानसिक कष्ट और मानसिक कठिनाइयां जो वर्ण की जाती हैं, उनका नाम तप है।
मैंने आपको वाणी के तप के बारे में कहा है कि आपको सप्ताह में 2 घंटे का मौन रहना चाहिए। आंतरिक मौन ही वाणी का वास्तविक तप है।
मित्रों,
इस वर्ष हमने जितनी भी उपासनाएं बताई हैं, उसमें हर साधक से कहा है कि जो कोई भी उच्च स्तरीय साधना करना चाहता है, सप्ताह में 1 दिन 2 घंटे का मौन रखे। यहाँ भी हम आपको मौन कराते हैं।
नहीं साहब,
हम मौन तो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक बात और करते हैं। क्या करते हैं?
स्लेट पेंसिल लिए फिरते हैं। हमने यह कहा था कि अपनी वृत्तियों को केंद्रित कीजिए।
आपने तो वाणी से काम करना बंद कर दिया, लेकिन स्लेट पेंसिल लेकर दुनिया भर में अपने मौन का विज्ञापन करते फिर रहे हैं।
नहीं साहब,
फिर लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि हमने मौन किया है?
मौन का विज्ञापन करता फिर रहा है। हाँ महाराज जी,
मैं तो इसीलिए इशारा कर रहा था। दुनिया भर के ढोंग बनाए फिरता है कि मैंने मौन किया है। कोई ऐसे मौन होता है?
साहब,
उपवास करते हैं। क्या उपवास करता है?
नहीं साहब, कुछ रबड़ी खाता हूँ, कुछ पकौड़ी खाता हूँ, कुछ जलेबी खाता हूँ।
क्या क्या खाता है? कुछ और रह गया हो तो उसे भी खा जा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस दिन उपवास रखता है, उस दिन जो कोई भी चीज जीवन में खाने से बच जाती है, सब उसी दिन खाता है। क्या उपवास इसी को कहते हैं? नहीं, इसे नहीं कहते हैं।
विज्ञापन वाली आध्यात्मिकता छोड़िए। मित्रों, विज्ञापन वाली इस आध्यात्मिकता को छोड़ दीजिए।
वाणी के तप के बारे में आपको मौन का भी अभ्यास करना पड़ेगा।
यहाँ भी आपको मौन का अभ्यास करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि वाणी की शक्ति जब कम हो जाती है, तब आपको मालूम नहीं है, मनोबल कम हो जाता है,
हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है।
आप यहाँ आइए, हम चार्ज कर देते हैं। हमें बहुत काम करना पड़ता है, हमारी बैटरी में से बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है।
जब जरूरत से ज्यादा खर्च हो जाती है, तब इच्छा होती है कि हिमालय चला जाऊं।
वहां मैं क्या काम करता हूं? तप करता हूं।
कौन सा तप करता हूं?
कैसे करता हूं? ऐसा खाद्य लेता हूं जिसमें किसी व्यक्ति का संस्कार नहीं होता है।
संस्कारविहीन भूमि में से संस्कारविहीन खाद्य, उसमें चाहे पत्तियां हों, चाहे घास हो, चाहे वह जड़ हो, खाता रहता हूं।
यह क्या है? जीभ का तप है? नहीं महाराज जी,
आप तो दोपहर को भी और शाम को भी 1 कटोरी घी, 1 कटोरी दही और 1 कटोरी शाक ले लिया कीजिए।
नहीं बेटे, यह खुराक ठीक नहीं है। इसमें न जाने किस चीज का संस्कार है, न जाने किस संस्कार वाले ने बनाया है। यह जो शाक बनाई गई है, न जाने किस खेत में उगाई गई है। अन्न जो आपने खाया है, न जाने किस किसान की, किस भूमि में और किस पानी में बोया गया है, इसलिए संस्कारवान नहीं है।
पूज्य गुरुदेव का जीभ का तप। इसलिए मित्रों, अपनी जिह्वा को तपस्विनी बनाने के लिए मैं क्या करता रहता हूँ? संस्कारविहीन खाद्यों को ही ग्रहण करता हूँ।
यह क्या है? जीभ का तप है। हमको जीभ का तप क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमको काम करना पड़ता है, वचन बोलने पड़ते हैं,
प्रवचन देने पड़ते हैं, आशीर्वाद देने पड़ते हैं।
इसलिए इस यंत्र को इतना पैना और तीखा होना चाहिए कि जहाँ भी इस हथियार का इस्तेमाल किया जाए, वह पार करता हुआ निकल जाए। और क्या करना पड़ेगा?
मौन करना पड़ेगा।
मौन कैसे करते हैं?
बेटे,
हमें 1 साल तक मौनी रहना पड़ता है। बातचीत करें तो किससे करें?
अकेले ही बात कीजिए।
जब मन आता है तो अकेले भी कर लेते हैं। कोई श्लोक याद आ गया, उसे बोल लिया। कोई मंत्र याद आ गया, बोल लिया।
सांसारिक व्यवहार नहीं करता। सांसारिक व्यवहार को रोक देने का नाम है मौन।
हमको मौन रहना पड़ता है। शक्तियों का संग्रह करके वाणी का तप करते हैं। इसमें किसी की निंदा करने की भी गुंजाइश नहीं है। किससे बात करेंगे?
किसकी निंदा करेंगे?
किस पर गुस्सा करेंगे?
वाणी से खराब शब्द कैसे बोलेंगे? मित्रों,
हमारे ये तीनों तरह के मौन चलते रहते हैं। कौन कौन से? खाने वाला, बोलने वाला, वाणी को चुप रखने वाला, ये तीनों ही मौन होते रहते हैं। हम यहाँ भी यही करते रहते हैं।
हमारी दुकान थोड़े समय तक खुलती है।
आप लोगों को समय की बहुत व्यस्तता है, इसलिए हम सवेरे खोल देते हैं। आपको मालूम नहीं है, हम 1 बजे से खोलते हैं और शाम को 6 बजे बंद कर देते हैं।
आजकल 6 घंटे खोलते हैं।
आजकल तो बेटे हमारे शिविर चल रहे हैं, आप सब लोग आए हुए हैं। पता यह भी नहीं बनता कि हमने आपको बुलाया है और आपसे यह कहें कि हमको टाइम नहीं है, हम आपसे बात नहीं कर सकते, यह बुरी बात है। इस समय हम विशेष रूप से सवेरे भी बात करते हैं। 1 से 6 बजे तक हमारी दुकान खुलती है और बाद में बंद हो जाती है। बाकी समय में क्या करते हैं? हम मौन रहते हैं, प्रातः भी मौन रहते हैं और रात को भी मौन रहते हैं।
मित्रों,
मैं आपसे क्या कह रहा था, यह बात कह रहा था कि आप वाणी का तप प्रारंभ कीजिए। वाणी के तप के बाद में दूसरी चीजें प्रारंभ होती हैं। क्या प्रारंभ होती हैं?
ये है इंद्रियों का तप। वाणी के बाद में दूसरे नंबर की इंद्रिय का नाम है कामेंद्रिय।
इंद्रियां 10 हैं, पर इनमें 2 प्रमुख हैं।
बाकी इंद्रियां तो ऐसे ही बेकार की हैं।
कौन कौन सी बेकार की हैं?
नाक है।
नाक क्या संयम करेगी?
कान का संयम
कुछ भी नहीं है। गाना वाना सुन लिया तो बात अलग है।
दिमाग की खुराफात है।
कान बेचारे का कोई दोष नहीं है।
तप इंद्रिय निग्रह को कहते हैं।
इंद्रिय निग्रह के बारे में एक के लिए मैंने इतनी व्याख्या कर दी है कि बाकी इंद्रियों के बारे में ज्यादा तो नहीं कह सकता। उसमें एक ही बात कह सकता हूँ कि आपको जो सारी की सारी उपासना करनी पड़ती है वह ब्रह्मलोक में करनी पड़ती है। कल हम आपको खेचरी मुद्रा करा रहे थे।
सारे के सारे स्वर्गलोक का सिद्धिलोक का वर्णन इस ब्रह्मांड के भीतर कर रहे थे। ब्रह्मांड क्या है
बेटे? यही है ब्रह्मलोक, जिसे हम सहस्रार चक्र कहते हैं। इसी में क्षीर सागर है, इसी में कैलाश पर्वत है, इसी में शेषशाय विष्णु सो रहे हैं, इसी में 1000 फन वाला सांप है। क्षीरसागर के भीतर ऐसी लिबलिबी चीज भरी हुई है जिसे अंग्रेजी में सिनोबियल फ्लूड कहते हैं और साइंस के जूलॉजी के हिसाब से इसका नाम ग्रे मैटर रखा है। यही क्षीरसागर है।
मनोमय कोश का विज्ञान। महाराज जी,
क्षीरसागर तो बहुत दूर है बेटे, कहीं भी नहीं है। क्षीरसागर हमारे भीतर है।
महाराज जी, विष्णु भगवान तो शेष्य पर सोए हुए हैं। हाँ बेटे, पर वह शेष्य कैसी है? 1000 फन वाली है।
1000 फन वाला क्या है? सहस्रार चक्र है। एनेटमी के हिसाब से भी यह साबित होता है और आध्यात्मिक सिद्धांत से भी सिद्ध होता है। जिसको हम मनोमय कोश कहते हैं वही सहस्रार चक्र है। कहाँ है? हमारे भीतर है। केचरी मुद्रा में हमने जो अमृत कलश बताया था वह उसी के भीतर है। ब्रह्मलोक उसी के भीतर है। हमारी सारी की सारी मशीन जो काम करती है उसमें एक तो सांसारिक काम है।
जब यह सांसारिक काम करती है तो उसका नाम होता है ब्रेन या दिमाग।
ब्रेन हमारा कौन सा काम करता है? हिसाब करने में, व्यापार करने में जब यह मशीन काम करती है तो हमारा मस्तिष्क ब्रेन कहलाता है, और जब यह आध्यात्मिक काम में काम आता है तब इसका नाम ब्रह्मलोक हो जाता है, ब्रह्मरंध्र हो जाता है।
सारी की सारी गतिविधियां, सारी खेती इसी में होती है।
ध्यान इसी में होता है, जप इसी में होता है, कुंडलिनी जागरण इसी में होता है, ब्रह्म साक्षात्कार इसी में होता है, भगवान के दर्शन इसी में होते हैं, ज्योति का दर्शन इसी में होता है, आज्ञा चक्र इसी में से जागृत होता है, प्रकाश इसी में से आता है, सब इसी में से आता है।
मित्रों,
इसके लिए क्या करना चाहिए?
बेटे, इसके लिए खुराक चाहिए।
अगर आपके दिमाग को खुराक नहीं मिलेगी तो दिमाग में चक्कर आने लगेंगे और दूसरी शिकायतें पैदा हो जाएंगी।
ब्रह्मलोक को भी खुराक चाहिए। हाँ बेटे, ब्रह्मलोक को भी खुराक चाहिए।
खुराक कहाँ से मिलती है? उसी की बात मैं कह रहा था। दीपक की लौ जो ऊपर जलती है उसके लिए दीपक में तेल भरना पड़ता है। आप क्या करते हैं? आपने तो ऐसा विलक्षण काम कर रखा है जिससे आध्यात्मिक उन्नति संभव ही नहीं है।
आध्यात्मिक उन्नति के बारे में मतिभ्रम पैदा हो जाता है।
इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब यह है कि नीचे वाले कमरे में रहने वाले किराएदार ने नल खोल रखा है और ऊपर वाला किराएदार चिल्लाता रहता है कि देखिए भाई साहब,
अपना नल बंद कीजिए, तब ऊपर पानी चढ़ेगा और तब हमारा काम होगा। नल बंद कर दिया और तब ऊपर पानी जाने लगा।
नीचे वाले किराएदार से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे।
हम नीचे से नल खोल देते हैं और ऊपर वाला सूख जाता है। ऊपर वाला चिल्लाता रहता है कि हम मरे जाते हैं। हमारा ब्रह्मलोक चिल्लाता है कि हमको पानी नहीं मिलता, और देखिए हम नहाए बिना बैठे हैं, और देखिए हमारी लालटेन में मिट्टी का तेल नहीं है और हम अंधेरे में बैठे हुए हैं।
अब हमारे लिए तेल लाइए। आध्यात्मिक सामर्थ्य का रहस्य। मित्रों,
आपसे मैं यह कह रहा था कि आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए जिस पेट्रोल की जरूरत है, जिस सामर्थ्य की जरूरत है, जिस शक्ति की जरूरत है, वह कहाँ से आती है? मैं कल आपको दूसरी बात कह रहा था, अन्न की बात कह रहा था कि अन्न से हमारा शरीर चलता है, अन्न से हमारा ब्रेन चलता है, मन चलता है।
कौन सा मन?
जो संसार के कामों में आता है, जो भागता रहता है।
एक मन हमारे भीतर और है और उसका नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा किससे जागृत होती है?
जो अध्यात्म के काम आती है, जो कि गायत्री का स्वरूप है। वह कहाँ से आती है? वह बेटा वहाँ से आती है जहाँ अन्न से मन और मन के बाद में एक और तत्व है जिसका नाम है ओजस। इसको तेजोले भी कहते हैं। आपने कभी देवी देवताओं के चेहरे पर प्रकाश छाया हुआ देखा होगा। उनके चेहरे पर एक गोल सा चमकदार घेरा बना रहता है। यह क्या है? यह आदमी के भीतर का तेजोले है जिसे आदमी की इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, पर्सनल मैग्नेट कहते हैं। यह वह मैग्नेट है जो ऋषियों के शरीर में से निकलता था, उनके चारों ओर आभा के समान छाया रहता था।
शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, यह था उनका तेजस। खबरदार, अगर तूने हमारा किया तो हम तुझे तोड़कर फेंक देंगे। शेर आता तो था पर चुपचाप बैठा रहता था।
वह गाय को नहीं मार सकता था।
यह था तेजोवलय। मित्रों,
तेजोले क्या है?
यह इलेक्ट्रिसिटी है। कैसी इलेक्ट्रिसिटी है? आध्यात्मिक इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हम ओजस कहते हैं,
जिसको हम वर्चस कह सकते हैं। यह कहाँ से आता है? जब तक हम अपने पानी को रोकना शुरू नहीं कर देते। स्थूल रूप से पानी रोकने से मेरा मतलब नहीं है, स्थूल भी रोकना आवश्यक है क्योंकि आपकी सेहत के लिए यह आवश्यक है। दुनिया में कोई भी पहलवान ऐसा नहीं हुआ जिसने ब्रह्मचर्य की उपेक्षा की हो और दुराचारी जीवन जिया हो। ऐसा हो नहीं सकता। नहीं साहब,
हम तो दुराचारी जीवन जिएंगे और पहलवान बनेंगे।
नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दुराचारी पहलवान बन गया हो।
आपको अगर शारीरिक दृष्टि से पहलवान बनना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, ब्रह्मचर्य से रहना ही होगा।
मैं सांसारिक वस्तु की बात नहीं कह रहा हूँ,
मैं तो यह कह रहा हूँ कि आध्यात्मिक सामर्थ्य संपादित करने के लिए, आध्यात्मिक सामर्थ्य का भंडार अपने भीतर जमा करने के लिए यह आवश्यक है कि आपके भीतर से मानसिक ब्रह्मचर्य बना रहे। मानसिक ब्रह्मचर्य की ताकत। मित्रों, मैं मानसिक ब्रह्मचर्य की बात कह रहा था, मानसिक ब्रह्मचर्य पर जोर दे रहा था। मानसिक ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं बेटे?
मानसिक ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं जब नारी नर के बारे में और नर नारी के बारे में अच्छे विचार करते हैं। सौंदर्य का कोई दोष नहीं है।
वह तो सत्यम शिवम सुंदरम है।
सौंदर्य एक वस्तु है जिसको हम देख सकते हैं। सौंदर्य किसी का हो, नर या नारी, दोनों में से किसी का सौंदर्य हो, उसमें शालीनता, सज्जनता और पवित्रता मिली रहनी चाहिए। अगर आपकी आंखें नारी को इस रूप में देखने में समर्थ हैं, तो मैं आपको ब्रह्मचारी कहूंगा। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन वह आपकी धर्मपत्नी के होने चाहिए, रमणी के नहीं।
कामिनी के बच्चे नहीं होने चाहिए गुरुजी।
कामिनी से रमणी से क्या फर्क पड़ता है
बेटे? जमीन आसमान का फर्क पड़ता है।
तो क्या नारी से अलग रहें?
नहीं, मैं अलग रहने का हिमायती नहीं हूँ।
कुटुंब में आप अलग नहीं रह सकते। माँ से अलग रहिए
बेटे। माँ से मैं अलग कैसे रहूँ?
उसने मुझे अपने पेट में पैदा किया, छाती से लगा करके रखा और कई वर्षों तक उसकी गोद में खेला।
माँ को मैं कैसे अलग कर दूँ?
नहीं साहब,
बेटी से अलग रहिए।
बेटी से मैं कैसे अलग रहूँ?
छोटी थी जब पैदा हुई थी और उसे हम गोदी लिए फिरते थे। पापा हमको ये दिखा के लाओ, वो दिखा के लाओ।
भला मैं इसे कैसे फेंक दूँ? नहीं साहब,
अपनी बहन को अलग रखिए।
बेटे, मैं कैसे अलग रखूँ? जब राखी बांधने आती है तब मैं कैसे कहूँ कि रहने दे? घर से जब वह विदा होती है और अपने भाई से छाती भरकर लिपट कर रोती है, तब बेटे मैं कैसे धकेल दूँ उसको?
नहीं धकेल सकता।
धर्मशास्त्रों में नारी की निंदा की गई है, कई बड़े कुलबुलाते शब्द कहे गए हैं, जैसे एक में कहा गया है चुड़ैल आदि शब्द कहे गए हैं। क्या नारी ऐसी होती है? नहीं, ऐसी नहीं होती। वह कौन सी नारी होती है जिसे हम कामिनी, डाकिनी, रमणी आदि कहते हैं? बेटे, यह हमारे विचारों में होती है, हमारी नजरों में होती है, कलुषित भावनाओं में होती है। जब कभी भी आप नारी को कामिनी की दृष्टि से देखते हैं, रमणी की दृष्टि से देखते हैं, तो आप ध्यान रखना कि यह आपके लिए पिशाचिन है, आपके लिए डाकिन है और यह आपका सारा का सारा वर्चस और तेजस नष्ट करके रहेगी।
तो महाराज जी, फिर ब्याह? हाँ बेटे,
ब्याह तो करना चाहिए, लेकिन ब्याह किससे किया जाता है?
इसका नाम है धर्मपत्नी। ब्याह रमणी से नहीं किया जाता।
अगर आपने किसी रमणी से ब्याह किया है, कामिनी से ब्याह किया है, अगर आपने शक्ति के लिए, सौंदर्य के लिए, वासना के लिए ब्याह किया है, तो आपने केवल वेश्यावृत्ति को अपनाया है। हमारे भारतीय समाज में जो विवाह किए जाते हैं और विवाह करने के बाद में घर में जो नारी आती है उसका नाम हो जाता है धर्मपत्नी। वह धर्मपत्नी कहलाती है।
धर्मपत्नी कौन होती है?
धर्मपत्नी ऐसी होती है जो हमारे साथ साथ काम करती है। जिस तरीके से नाव चलाने के लिए मल्लाह अपने दोनों हाथों से चप्पू लेकर काम करता है, उसी तरीके से गृहस्थ जीवन और सामाजिक जीवन को साथ साथ चलाने के लिए एक सहधर्मिनी, एक सहयोगिनी, एक धर्मपत्नी होना आवश्यक है। यह शब्द उस नारी के लिए है जो हमारे साथ साथ दो भाइयों के तरीके से चलती है। जैसे राम और लक्ष्मण दो आदमी थे और वनवास में साथ चलते थे, गृहस्थ जीवन में नर और नारी को, पति और पत्नी को इस तरीके से चलना चाहिए जैसे मानो दो सगे भाई हों। काम वासना के लिए स्थान नहीं है। काम वासना के लिए स्थान हो सकता है।
यहाँ मित्रों,
हमारे यहाँ 16 संस्कारों में से एक गर्भाधान संस्कार है। इसका मतलब यह है कि पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं, देवी देवताओं से, सभी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन है कि हमारी एक संतान होनी चाहिए। संतान पैदा करने का उद्देश्य समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन करना है। अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए गर्भाधान संस्कार भी हो सकता है। पेट की भूख को पूरा करने के लिए हम दो रोटी खाते तो हैं, पर उससे हमको जीभ का जायका मिल जाए तब तो नफे की बात है। कामवासना में कुछ मिल जाता है, मिल भी जाता होगा, पर मूल उद्देश्य वह नहीं है। फिर क्या हो सकता है? आप ब्रह्मचारी हो सकते हैं, गृहस्थ होते हुए भी आप ब्रह्मचारी हो सकते हैं। दूसरा पक्ष यह भी है कि आप गृहस्थ होते हुए भी दुराचारी हो सकते हैं। आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य वही है जो उपासना के लिए आपको प्रार्थना करवाता है। उपासना में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है।
अगर आपका ब्रह्मचर्य शारीरिक हो तो अच्छी बात है, शारीरिक हो चाहे न हो मैं उस पर ज्यादा जोर नहीं देता। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आपका मानसिक ब्रह्मचर्य अक्षुण बना रहना चाहिए। देखने का तरीका बदलें। मित्रों, आपके देखने का तरीका, सोचने का तरीका, आपकी इंद्रियां जो वास्तविक दुराचारिणी हैं, वह है आपकी आंख। सूरदास ने अपनी आंखों को फोड़ लिया था।
मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी आंखों को फोड़ लें।
महाराज जी, फिर हमको दिखाई कैसे पड़ेगा?
नहीं बेटे,
दिखाई देने वाली आंख अलग है, वह चमड़े वाली आंख है, लेकिन जो आंख फोड़ी जानी चाहिए उसका नाम है दृष्टिकोण, अपने चिंतन का तरीका।
चिंतन का तरीका क्या है? जब आप किसी नारी को देखते हैं तो उसको देखने के साथ साथ में आपका शैतान भी उसको देखता रहता है। शैतान के तरीके से आप खत्म कीजिए और इस तरीके से देखना शुरू कीजिए कि यह हमारी बेटी है। हमारी बेटी 20 साल की है। यह कौन है? यह हमारी बहन है। हमारी बहन 28 साल की है। अच्छा, यह हमारी माँ है जो आपसे बड़ी है।
मित्रों,
मैं तो यही कहता हूँ कि आप इंद्रिय का तप 1 और वाणी का तप 2, आप यह 2 तप कर ले तो बस काम पूरा हो गया। 1 वाणी का तप और 1 कामेंद्रिया का तप, यह 2 तप आप कर लें तो आपके लिए काफी है। इसके लिए हमने आपके मस्तिष्क को ब्रह्मचर्य में बनाने के लिए गायत्री माता की मूर्ति नारी के रूप में बना दी है।
गायत्री माता क्या है, जरा देख कर के आए?
गायत्री माता के जितने भी फोटो हमने छाप कर दिए हैं, जवान महिला के छाप कर दिए हैं।
नहीं साहब, बच्ची का बना दीजिए।
नहीं बेटे, हम बच्ची का नहीं बनाएंगे, तो आप बुड्ढी का बना दीजिए।
बुड्ढी का भी नहीं बनाएंगे। गायत्री माता के जो फोटो हमने बनाए हैं आप देख लीजिए, उनकी कितनी उम्र है।
आपके मंदिर में जो गायत्री माता है वह 18-19 साल की है। हमारे मंदिर में भी 18-19 साल की है। गायत्री तपोभूमि में भी 18-19 साल की है।
गुरुजी,
आपने जो लाखों की संख्या में फोटो छापे हैं वे सब कितनी उम्र की हैं?
बेटे, यही कोई 21 साल की है, जवान महिला की फोटो है।
आपने क्यों छापी है?
हमने आपके मानसिक ब्रह्मचर्य के लिए छापी है। इसलिए एक छापी है कि जवान महिला को आप माँ कहिए, जवान महिला है तो आप माँ कहिए, नारी के प्रति पवित्र दृष्टि रखें। महाराज जी,
किस तरीके से माँ कहें?
माँ की मान्यता आप इस तरीके से लाए जैसे कि स्वर्गलोक में उर्वशी अर्जुन के सामने आई थी। देवताओं ने देखा कि क्या अर्जुन को कीमती चीज दी जा सकती है या फिर घटिया आदमी घटिया चीज लेकर के रहेगा। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर महिला उर्वशी को उसके पास भेजा।
वह अपना प्रस्ताव अपने ढंग से कहने लगी। उसने कहना शुरू कर दिया कि हमें आप जैसा बच्चा चाहिए।
बच्चे से उसका मतलब कामसेवन से था।
अर्जुन ने उस महिला उर्वशी के चरणों की धूल उठाकर अपने सिर माथे से लगाया और कहा कि मैं आपका बच्चा हूँ, आप मुझे ही बच्चा मान लेंगी तो क्या हर्ज है। काम सेवन से मेरे जैसे बच्चा न हुआ तब, कोई लूला लंगड़ा पैदा हो गया तब, और कोई चोर उचक्का पैदा हो गया तब, तब आप मेरे जैसा बच्चा कहाँ से लाएंगी। इसलिए आज से मैं आपका बेटा हूँ।
बस यह उसकी दृष्टि थी।
उस तप से प्रसन्न होकर के देवताओं ने उसे गांडीव धनुष उपहार में दिया था और अर्जुन महाभारत में विजय प्राप्त करने में समर्थ हो गया था।
मित्रों, माँ कहिए।
किसको कहें?
गायत्री माता को माँ कहिए, जवान औरत को माँ कहिए।
इस तरह माँ कहिए जैसे कि शिवाजी ने कहा था।
शिवाजी के सामने एक खूबसूरत मुसलमान महिला लाई गई। उन्होंने उसको बार बार देखा।
क्या देखते हैं? यह देखते हैं कि काश
इतनी खूबसूरत मेरी माँ होती तो मैं कितना सुंदर लगता। मेरी माँ कुरूप थी, इसलिए मैं भी कुरूप हूँ। मेरी माँ भी ऐसी खूबसूरत हो जैसे कि यह महिला है, ताकि मैं भी सुंदर बनूं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में मेरी माँ ऐसी खूबसूरत हो, ताकि मैं भी इसके तरीके से पैदा होऊं। बेटे,
मैं यह कह रहा था कि तप की शक्ति कहाँ से आती है।
आप यह विचार कीजिए,
आप अक्षर अक्षर चिल्लाते हैं, मंत्र मंत्र चिल्लाते हैं और कहते हैं कि यह मंत्र जपेंगे, यह अक्षर जपेंगे। जप करते हैं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि अक्षरों के जपने के साथ साथ में, अक्षरों को दोहराने के साथ साथ में, उसके पीछे पेट्रोल कहाँ से आता है।
यह भी देखिए,
गाड़ी कहाँ से चलेगी।
यह भी तो देखिए,
हमारे पास बंदूक है। बंदूक तो है, पर चलेगी कहाँ से? निशाना तब लगेगा जब बंदूक में गोली के साथ साथ में जो शीशे की गोली है उसमें बारूद भरा होगा। लगती तो गोली है, बारूद नहीं। बारूद तो वहीं जलकर खत्म हो जाता है, लेकिन वास्तव में फेंकने की जो ताकत है वह बारूद में है। गोली चलाने की ताकत बारूद में है। बारूद क्या है?
बारूद बेटे उस तपश्चर्या का नाम है जो हमारी वाणी के द्वारा, दिव्य शक्ति के द्वारा, मानसिक ब्रह्मचर्य के द्वारा, संयम के द्वारा उपाजित होता है।
कामसेवन के लिए मैं गंभीर नहीं हूँ। मैं इसके लिए गंभीर हूँ कि आपकी दृष्टिकोण में से कामुकता निकलनी चाहिए। अगर आप अपनी दृष्टि से कामुकता को नहीं निकाल सकते तो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, भगवान तक अपने को पहुँचाने के लिए, चमत्कार पाने के लिए, सिद्धियां पाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उससे आप छूंछे रह जाएंगे।
इसलिए आपको उच्च स्तरीय साधना करनी चाहिए और नियम अपनाने चाहिए।
नियम वह है जिसको हम तप कहते हैं।
तप के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाइए। तप के साथ साथ आगे बढ़िए। आप तपस्वी बनिए और सिद्ध पुरुष होते चले जाइए।
यही मंत्र हम आपको बताते हैं। आपके लिए चमत्कार दिखाने के लिए यह काफी है।
यही गायत्री माता आपको शक्ति संपन्न और सिद्ध पुरुष बनाने के लिए काफी है। अगर आप उसमें तपश्चर्या को शामिल कर लें तब। आज की बात समाप्त। ओम शांति।